इसमें स्पष्ट कर दूं कि यहां जो महाविद्यालय चलते हैं वे एक नहीं पांच चलते हैं। 75 विद्यार्थी जो 175 विद्यार्थी करीब हैं उसमें 75 विद्यार्थियों का विद्यालय टोडामल सिद्धांत महाविद्यालय के नाम से कुन कुन कहान चलाता है। फिर पहले 25-25 विद्यार्थियों का था, कुछ कम हो गए हैं। 25 विद्यार्थियों का महाविद्यालय मंगनमल नेमीचंद पाटनी ट्रस्ट नाम से सौभागमल जी पाटनी चलाते हैं। 25 विद्यार्थियों का जो खर्चा विद्यालय एक पूनम चंद जी लोहारिया अजमेर वाले हैं उनके ट्रस्ट से चलता है, और एक देवलाली ट्रस्ट से चलता है, और एक टोडामल ट्रस्ट से भी चलता है। ऐसे मिलाकर के 175-76 विद्यार्थी होते हैं। अब उसमें बीच बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि जिन लोगों ने 25-25 विद्यार्थियों का कहा था, हर साल खर्चा तो बढ़ता है, तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि हम तो इतने ही पैसे देंगे, इसमें जितने विद्यार्थी पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े, वितराग भाव से। तो उनके किसी के 25 में से 24 हो गए, फिर 23 हो गए, फिर 22 हो गए, फिर बराबर तरक्की हो रही है, 20 हो गए। और सभी ट्रस्ट समाज के सहयोग से ही इन विद्यालयों को चलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये भ्रम निकला कुन कुन कहां ट्रस्ट चलाता है, ये वातावरण में होने से तकलीफ खड़ी होती है, क्योंकि दूसरे ट्रस्ट वाले जो चलाते हैं उनको इस बात का ऑब्जेक्शन होता है कि हम लोग करते हैं तो ऐसा क्यों ये कहा जा रहा है। हमको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हर एक ने फिक्स कर रखा है, अभी दो विद्यार्थी बढ़ाने हैं तो 6 ट्रस्टों के हाथ पैर जोड़ो, फिर करते हैं नहीं करते हैं। जब भी हम इस बात की अपील करते हैं तो दो आदमी खड़े होते हैं कि हमारी तरफ से दो विद्यार्थी बढ़ा दो, तो फटाफट कोई ना कोई ट्रस्ट उसमें झपट्टा मार के एक कोशिश करता है कि नहीं इसका तो हम लेंगे, तुम ले लो एक बढ़ा दो तुम विद्यार्थी, उसने तो अगला विद्यार्थी बढ़ाने के लिए ये पैसा दिया है, लेकिन वो विद्यार्थी बढ़ाना नहीं चाहते हैं और उसका पैसा लेना चाहते हैं। माने इसलिए इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और समाज को एक जानकारी सही सही जगह भाई आपको देनी चाहिए। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें बीच में कल पाप बंध की प्रक्रिया क्या है इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा हुई थी। चर्चा को उसके आगे बढ़ाना है। एक उदाहरण के माध्यम से बात सामने आई थी और वो बात ये थी कि मान लो एक आदमी ने एक घड़ी चुराई और वो ये समझता है कि मुझे इसका जो पाप लगा तो घड़ी चुराते वक्त ही पाप लग गया जितना लगना था सो, और अब मैं उस पाप को किसी ना किसी धर्म क्रिया को करके धो डालूंगा और घड़ी मेरे को पच जाएगी। इसके बारे में जो भी 15 मिनट में समझाया था उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। और उसमें निष्कर्ष ये निकला था कि पाप अकेला घड़ी चुराते वक्त ही नहीं बना है कि लेकिन जब से वो तेरे पास है वो निरंतर पाप बंध रहा है, और वो घड़ी पच जाए और पाप कट जाए ऐसा कोई उपाय जैन धर्म में नहीं है। उसे घड़ी को वापस भी कर देगा माफी मांग के, तो जो पाप अभी तक लगा है उसके बारे में उससे कोई जमा खर्च नहीं होगा, आज से आगे पाप लगना बंद होगा, उस पुराने पाप का हिसाब किताब आपको बराबर चुकाना पड़ेगा। तो यदि ऐसा है तो फिर हम अभी क्यों वापस करें, तो अभी भी चालू रहेगा, जो जो भीगी कामरी त्यों त्यों भारी होए, और आप कोई पुण्य कार्य करके उस पाप को काटना चाहते हैं ये भी संभव नहीं है, क्योंकि पाप की मैली पट्टी के ऊपर पुण्य की साफ पट्टी बन जाएगी और उसके बाद फिर पाप की पट्टी बनेगी और फिर पुण्य की पट्टी बनेगी। इस तरह पट्टियों के बंधन बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ये दोनों भाव बांधने वाले भाव हैं, काटने वाले भाव नहीं हैं, निद्रा करने वाले भाव नहीं हैं। इसलिए जिस धोखे में आप ये पाप कर रहे हैं, जिस पुण्य के भरोसे कहने काट लेंगे, उस धोखे में मत रहना, ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये हुआ था एक चैप्टर। अब अगला चैप्टर कि वो जो आपको मान लीजिए पाप लगा था, वो घड़ी चुराने का, वो 1 किलो पाप लगा था। वैसे पाप किलो में लगता नहीं है, लेकिन अपन ने समझने के लिए उस बात को अपन इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 1 किलो पाप लगा था मान लीजिए। जरा मैं थोड़ा इस उदाहरण को बदलता हूं आपकी सुविधा के लिए, कि घड़ी चुराने से जरा बदलता हूं कि आपने एक गोली चलाई, सामने एक आदमी मर गया, और उससे जो आपको पाप लगा वो 1 किलो पाप लगा। बात वही है, उस पर भी घटा सकते हैं, लेकिन वो जरा कठिन पड़ेगी, इस पर जरा सरल पड़ेगी, इसलिए थोड़ा मैंने ट्रैक बदला है। तो अब वो जो 1 किलो पाप हमें लगा उत्तम चंद जी, उसमें 3 कारण हैं। एक तो वो जीव मरा, इसके कारण कितना पाप लगा, और हमने उसे मारने का भाव किया, इसके कारण कितना पाप लगा, और हम उसे मार सकते हैं, बचा सकते हैं, सुखी दुखी कर सकते हैं, ऐसी जो हमारी मान्यता है, अभिप्राय है, उसके कारण कितना पाप लगा, ये बंटवारा हमें करना है। अब इस बंटवारे के लिए मैं आपको थोड़ा सा सहयोग करता हूं, जिससे आपको बंटवारा करने में सुविधा रहे। मान लो आपने गोली चलाई और वो आदमी के बगल से गोली निकल जाती कान के और नहीं लगती और नहीं मरता, तो आपको पाप कितना लगता, ये नक्की करो। अरे तब तो लगा 1 किलो पाप, गोली चला दी और आदमी नहीं मरा, तो कितनी सुविधा आपको मिल जाती, उसमें कितना पाप कम लगता, इसके बारे में आप सोचो। सबका एक ही जवाब है कि पूरा 1 किलो, माने उसमें 1 पाव रत्ती भी सुविधा मिलने वाली नहीं है, चाहे वो जी मरे और चाहे वो ना मरे। ठीक है, इसमें तो कोई को मतभेद नहीं है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जीव के मरने और नहीं मरने से पाप बंधने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मरने पे भी 1 किलो और नहीं मरने पे भी 1 किलो। यदि 1 ग्राम भी उसकी मरने से लगता होता तो नहीं मरने पे 1 ग्राम तो कम होता ना। क्या ये तो आपने कई जगह सुना पड़ा होगा कि जैन धर्म तो भावों की प्रधानता वाला है, हमारा तो मारने का भाव हो ही गया, हमने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं, हमने तो गोली चला ही दी है, ये तो उसका भाग्य था, आयु कर्म शेष था, क्यों, और वो बच गया। तो इसका सीधा सच्चा अर्थ हुआ कि क्रिया का रंच मात्र भी फल जैन दर्शन में नहीं है। अब चाहे वो चोरी पर लगा लो, वो घड़ी की लगाना वो सुविधा के लिए, आप तो कि आपने घड़ी चुराई, चुराने का भाव किया और चुराने का अभिप्राय मान्यता रही, और वहां 1 किलो पाप लगा, तो घड़ी चुराने का हो, जो घड़ी तुम्हारे पास है उसका कितना पाप, क्यों जी नहीं होती वो तो भी उतना ही लगता। अब समझ, अभी एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं धन कुमार जी, कौन सा, कि क्रिया का कुछ भी नहीं है जैन धर्म में, जबकि आज की दुनिया में गवर्नमेंट की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, सारा पाप पुण्य क्रिया का ही है। इसका प्रमाण क्या है? वो आदमी मरा तो पुलिस केस बनेगा, क्यों? मुकदमा चलेगा, गवाह सफा होंगे और ये बात सिद्ध हो गई तो उसे फांसी लगेगी, ना तो आजीवन कारावास होगा, होगा ना। और यदि वो बगल से निकल गया और नहीं मरा तो बोलो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केस ही नहीं चलेगा। पुलिस कहेगी इस केस में दम ही नहीं है, मैं हम क्या चलाएं? पर चलाएगी तो केस चलने के पहले एक केस चलता है अदालत में कि ये केस चलाने लायक केस है या नहीं। पर जब कहती कि जिसे मारने की बात की जा रही वो तो जिंदा है तो वही फेल हो जाता और केस ही नहीं चलता। इसका मतलब ये हो गया कि जगत के हिसाब से क्रिया का ही पाप है। यदि वो क्रिया नहीं हुई तो तुम्हारे मन में कैसे ही भाव हो गए और तुम्हारा कैसा ही अभिप्राय रहे, उसके पास कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, यानी उन्हें वो कोई पाप मानता ही नहीं है। और फिर क्यों नहीं मानता है, क्या है, मैं उस लंबाई में नहीं जाऊंगा। जैसे मैं अहिंसा वाले व्याख्यान में बात करता हूं, क्योंकि वो संभव नहीं है कि किस किस को करेंगे अभिप्राय के आधार पर, भाव के आधार पर, कोई भी जेल के बाहर नहीं रहेगा, लंबी प्रक्रिया है। लेकिन मतलब उससे मतलब नहीं है, कितना तो नक्की हो गया ना कि गवर्नमेंट तो एक्शन को ही पाप मानती है, काया में से पाप हो रहे, क्रिया में हो रहे तो ही पाप मानती है, अभिप्राय को और भाव को पाप ही नहीं मानती। तो ये जगत से तो हमारा किसी भी प्रकार से हिसाब बैठता ही नहीं है। अब जो जगत जैसी मान्यता वाले जितने धर्म हैं ना, उनसे बैठेगा। और जगत की मान्यता जैसे जो हमारे जैनियों में और हम में भी और मुमुक्षुओं में भी, आप कहें हम में तो कोई, मुमुक्षुओं में तो कोई नहीं होगा। आपको हमने एक मत से कह दिया ना कि नहीं मिलेगा तो अब कुछ भी रियायत नहीं मिलेगी, अब यहां हम पे क्यों थोपते हो? क्यों? हमने तो एक मत से कह दिया ना कि वो जीव नहीं मरेगा तो भी 1 किलो पाप लगेगा, तो हम तो ऐसी मान्यता वाले नहीं है। तो फिर मुझे उत्तम चंद जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा कि आप सच्चा छाती पे हाथ रख के देखो कि आपके पैर के नीचे आके कोई कीड़ा दबके मर जाए तो आपको कितना दुख होता है, आप अंदर में कितना गिल्टी कॉन्शियस फील करते हैं कि मेरे पैर के नीचे कीड़ा नहीं मरना चाहिए था। यानी जो क्रिया में पाप होता है उसके प्रति आप जितने सेंसेटिव हैं, भाव वाले पाप के प्रति उतने सेंसेटिव हैं आप क्या, नहीं मुझे बताओ। मैं थोड़ा और गहरा करूं उदाहरण को, आपको आपको सुविधा हो इसके लिए। किसी माँ बहन को आप छेड़ दें और फिर आपकी थोड़ी सी मरम्मत हो जाए और रंगे हाथ पकड़े जाएं तो आप अंदर में बहुत अपराधी अपने को महसूस करते हैं, क्यों? लेकिन आप मन में उसके लक्ष्य से कितने ही खोटे से खोटे भाव, जितनी क्रिया तुमने की है ना उससे 100 गुने आगे तक के भाव कर लें तब ना तो आपकी पिटाई होती, जगत तो करेगा ही नहीं क्योंकि जगत तो मानता ही नहीं है। लेकिन तुम भी अपने को कितना बड़ा अपराधी मानते हो मुझे बता। ब्रह्मचारी इस पाल जी हैं कि नहीं? कमरे पर होंगे। एक घटना सच्ची घटी थी एक आदमी के साथ, तो उसने किया तो कुछ नहीं ना, लेकिन तुमने इतने 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 आगे बढ़ गए थे, मुंह से निकल गया था, हाथ से छू लिया, तो किया तो कुछ नहीं ना। तुम मुमुक्षु हो के तुम ऐसी बात करते हो, किया कुछ नहीं, क्या बाकी रहा? बाकी तो तुम कर नहीं पाए, किया नहीं वाली बात है कहां? और हम छोड़ो ना किसी को, हम अपने अपने पर देखें ना। अब वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब में घटित घटित कर करके अपने अपने मन को भी देख लो और क्रिया को देख लो। तो क्रिया में अपराध हो जाए भले ही कोई नहीं देख पाए तो भी हम अंदर में बहुत दुखी होते हैं, पश्चाताप बहुत होता है, उसका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, उसके लिए 2-4 उपवास करना चाहते हैं, और भाव के लेवल पर रोजीनी सब कुछ होता रहता है तो उसका हमें कुछ भी नहीं है। तो हम किन में हैं? वो जैन धर्म का जो फंडामेंटल है पहला सिद्धांत कौन सा, कि क्रिया से पुण्य पाप नहीं है और क्रिया से धर्म नहीं है। कि इस पर हम कितने हमारे जीवन में हमारे उतरा है वो हमारी गंभीरता से विचार करने की बात है। अभी आगे पॉइंट बढ़ाएंगे अपन, लेकिन एक बात पहले नक्की हो जाए कि क्रिया अब ऐसा अन्याय नहीं लगता है। अब दूसरा ट्रैक बदल रहा हूं देवेंद्र, एक पॉइंट खत्म हो गया दूसरा उठा रहा हूं। अन्याय नहीं लगता है? क्या अन्याय नहीं लगता है? कि उसको गोली मारने का कुछ भी पाप नहीं। माने ऐसे चित्त भी हमारा है ना, यानी थोड़ा तो उसे हिस्सा देना चाहिए था, हमारा बस चले तो 99% उसको ही दे दें और भाव माप को थोड़ा बहुत दें। लेकिन तुम तो जीरो में ही नहीं रखते हो, उसका पाप ही नहीं। क्यों? वो मर गया, उसका पाप ही नहीं। सचमुच हमारे दिल को यह स्वीकार नहीं है। इसे हृदय के किसी ना किसी कोने से हमारी ये आवाज अवश्य उठती है कि क्रिया का कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। तो और कभी कभी तो लोग कहते हैं ककड़ी को चोर को कटार मारना नहीं है, अकेले बेचारे का भाव में थोड़े से भाव बिगड़ गए थोड़े से, पर अभिप्राय तो बहुत भीतर है, उससे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे अंदर में अभिप्राय, हम दूसरे को सुखी दुखी कर सकते हैं, माँ बता सकते हैं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और भाव भी थोड़े से बिगड़ गए और इसको तुमने पूरा एक किलो पाप, एक ककड़ी के चोर को कटार मारना नहीं है, कहते नहीं है। क्यों नहीं है? समझना आप कि उसको जो तुम मारने के, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता है कि नहीं, ये बोलो। आपने कितना लटाया गुरुदेव ने, और बाकी गुरुदेव के जाने के बाद विद्वान लटा रहे और सुबह से शाम तक दे धमाधम चल रहा है ना। तो जब उसके मरण जो है वो व्यक्ति हमसे परद्रव्य है कि नहीं, और परद्रव्य में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी वज्र की दीवार है दो के बीच में, हमारा रंजमात कर्तृत्व तो नहीं है। यदि आपकी ये मान्यता है सच्ची हृदय से, तो जब हमने उसमें कुछ किया ही नहीं तो उस बात का पाप हमें क्यों लगे? इसमें बिल्कुल न्याय है। तुम्हें अन्याय दिखता है, इसका मतलब तुमको पर के कर्तृत्व की मान्यता का विश्वास है अभी। तो तुम समझे ठीक है, फिर सोचना क्या सुरेश। यानी हम कहते हैं कि तुम्हें उसका कितने बड़ा अपराध हो गया, वो मर गया और हमने उसे मार दिया और उसका कुछ पाप नहीं। तो तुमने उसे मार दिया तो उसके मरण की क्रिया के कर्ता तुम हो, तो एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है। उसके मरण का संबंध तुम्हारे उससे बिल्कुल नहीं है, उसके आयु कर्म से है। बंध अधिकारी की उन गाथाओं का क्या हुआ कि आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। और आयु छह से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ऐसी कोई गोली बनी है जिससे आयु कर्म का आकर्षण हो जाए? यानी हमारे अंदर जो उसमें पाप पुण्य बुद्धि है, उससे कुछ पाप बंधना है बनता है कि पुण्य बनता है कि धर्म होता है, ये इनडायरेक्ट वे में पर में कर्तृत्व की बुद्धि रूप महामिथ्यात्व है। सारा कर्ता कर्म अधिकार इसके विरुद्ध लिखा गया है, क्योंकि आपने माना ही नहीं कि हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है, आज तक किया नहीं है, कल करेंगे नहीं, आज कर नहीं सकते। ये माना होता तो ये प्रश्न तुम्हारे चित्त में कहां से उखड़ता कि थोड़ा तो मिलना चाहिए उसको। क्यों? तो थोड़ा किया यानी उसमें एक ग्राम पाप यदि बंधे क्रिया से तो एक ग्राम हमने किया ऐसा माना जाएगा ना, और नहीं करे और फिर पाप बंधना चाहिए, ये कहां से लाए? तो वो जो हमारा कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है वो उसके मूल में है, जिसे आप दया करुणा और नमानु क्या क्या नाम देते हो, यानी जीव हिंसा, चोरी की क्रिया, झूठ बोलने की क्रिया, विचार की क्रिया, परिग्रह जोड़ने की क्रिया, ये जो मान्यता है राजेंद्र जी, ये कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है। चलो अभी तो निपट लेते हैं कि उसका तो कुछ नहीं है, एक जगह कर लेते खत्म। वो हमारे में तो अंदर का चोट पकड़ने की कोशिश की है ना। अब वो तो क्रिया का तो कुछ पुण्य पाप नहीं रहा धर्म। अब जो बचा हमारे पास 1 किलो पाप, वो भाव दो, मारने का अभिप्राय माने मान्यता और मारने का विकल्प माने राग द्वेष, ये दो ही बंध के कारण है ना। मैंने एक राग आदि अशुद्ध उपयोग से तो मिथ्यात्व माने मान्यता और राग द्वेष दो ही बातों से बंध होता है, मरण होता है कल में ना। तो ये दो बंध के कारण रहे, इनमें बंटवारा करो। अब आप लोग नहीं कर सकते हो तो मैं कर दूं बंटवारा, मान लेना, मानो तो ये करे आप ही कर दो। तो मैं कहता हूं कि मारने के भाव का 1 ग्राम पाप और मारने के अभिप्राय माने मान्यता का 999 ग्राम पाप, बोलो स्वीकार है, सोच लो अच्छी तरह से। अगर तुम्हारे स्वीकार करने से क्या होता है, जो मान्यता बहुत अंदर गुप्त है उसका 999 ग्राम और मारने का जो हमने भाव किया था उसका 1 ग्राम और क्रिया का कुछ नहीं, बोलो प्रदीप जी अटपटा नहीं लगता है? तो अटपटा लगता है तो जैन धर्म सुना ही नहीं है आपने अभी तक, हम करें क्या? सिद्धांतों के रूप में ये सब बातें हम कर चुके हैं ना। अरे मैंने तो बहुत कम बताया है, 1 ग्राम और 999 ग्राम में तो 1000 गुनाई का फर्क है ना। तो शास्त्रों में तो ये लिखा है कि भाव का अनंतमा भाग पाप और अभिप्राय का अनंत गुणा, अनंत गुणा फर्क है। ये तो मैंने 1000 गुना बताया था जो आपको पच नहीं रहा है बाबू जी। अनंत गुणा है उसका, इसका अनंतमा भाग, उसका अनंत गुणा। एक ककड़ी के तौर पर कटार मारना नहीं है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि अपने अंदर अंदर अभिप्राय में खोटी मान्यताएं रखकर हम कितना बड़ा पाप बांध रहे हैं उसकी किसी को खबर ही नहीं है। और ये बाहर के छोटे छोटे पाप के लिए रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बज रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इतना ही हो रहे हैं। कौन सा क्रिया वाला? क्रिया वाला तो है ही नहीं, और थोड़े बहुत भाव वाला। इसलिए एक पंक्ति आती है, ताते हैं गाफिल भावों का परिणामन की समाल में, ताते हैं गाफिल मत हो प्राणी। उसका लोग ऐसा अर्थ करते थे कि परिणामों को संभाल के रखो, क्योंकि बंध मोक्ष परिणामों से ही है। मन क्रिया का वजन तो उसमें भी नहीं था, लेकिन मैं इसका उल्टा अर्थ करता हूं। बहुत दिनों से अशोक नगर में था तब से मैं कहता था वो पागल परिणामों के संभालने में गाफिल मत हो जाओ, परिणामी को संभालो, अपरिणामी को संभालो, उसकी तरफ देखो। तुम तो परिणामों के संभालने में गाफिल हो गए, सारी जिंदगी खराब कर दी। क्या अर्थ है ना? परिणाम ताते परिणामन की संभाल में, ताते गाफिल मत हो प्राणी। मैंने तू संभाल, ये क्या कह रहे? तू गाफिल मत हो, मैंने उसी में नहीं लगा रहे, ये क्रिया में ना लगा रहे और परिणामों में वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं लगा रहे। जो त्रिकाल अभिप्राय अंदर में पड़ा है उसको देख, जो अनंत दुख का कारण है। ये अन्याय लगता है। देखो अब क्या है, हम कि ऊपर से कोई ज्यादा पापी होगा कोई कम पापी होगा, वो अभिप्राय के भीतर में यदि मिथ्या दर्शन जब तक है तब तक तो सब बराबरी के हिस्सेदार हैं। तो हमको ये बहुत बुरा लगता है कि सब हमारी बराबरी पे हो गए, हम क्रिया कांड कर करके मर गए। पूजा पाठ करके फिर तो बात कर करके मर गए, वो इनने नहीं करे, वो ये भी हमारी बराबरी पे हो गए, तो वैसे ही हो गया ना, किसी बट्टा तो लगा ही नहीं, सभी एक ही भाव बिक गए। पहले जमाने में बैलों पर माल लाद कर एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते थे बिक्री के लिए, क्योंकि रोड अच्छे नहीं थे, बैलगाड़ियां चल नहीं सकती थी, ख्याल में आई ना, तो बैलों पर लाद लाद करके, तो किसी के पास 100 बैल होते थे, किसी के पास 200 बैल होते थे, किसी के पास 2-4 ही होते थे, अमीर गरीब सब होते थे ना, और ग्रुप बना करके चलते थे, क्योंकि रास्ते में डाकू लोग लूट लेते थे। वहां से आते थे मानो बुंदेलखंड से, जहां सामर तक नमक लेने, सामर है ना, यहां तक आकर माल लाते थे भर के यहां बेचते थे, और सामर से नमक लाद के ले जाते थे, वहां ले जाते थे। इधर गुना के पास सौड़ोरा है ना, वहां के रास्ते से आते थे, रास्ता भी बना हुआ है आज तक, कोटा वहां से इस रास्ते से आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जंगल में सारा माल उतार के जमीन पर रख दिया और बैलों को जंगल में घास चरने छोड़ दिया, इतना घास का साथ में ले सकते थे, जंगल में ही चराते थे, तो बदमाश डाकू लोग आए तो सारे बैल चुरा के ले गए। अब उनमें एक गरीब आदमी था, उसके पास 2 बैल थे, बिल्कुल मरियल मरियल, तो सब लोग उसकी बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि बैल तो इनके देखो, बैल तो इनके देखो, सब लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, बेचारा क्या करे गरीब आदमी, बुढ़े बैल तो मरियल, जो कुछ माल था साथ में जाता था, कि बैल तो देखो तो इनके। फिर सारे बैल ले गए तो सब बैठ के वहां रोते थे, क्योंकि बैल चले गए तो माल जंगल में पड़ा है, अब माल भी नहीं ले जा सकते, तो वो भी गया, क्यों रोते थे, तो वो भी रोता था, लेकिन वो ये कहता था कि आप सब लोग कहते थे कि मेरे बैल मरियल हैं, खराब हैं, लेकिन सभी एक ही भाव तो बिक गए, किसी को बट्टा तो लगा ही नहीं, अरे भले आदमी मेरे तो छोड़ जाते, मरियल का है बोले गए। क्यों तो ऐसे ये हो रहा कि हमारा सारा धर्म हम कर करके मर गए क्रिया में, और ये नहीं करने वाले सभी एक ही भाव बिक गए। ये जो कर्मबंध की जो प्रक्रिया है, ये हमें अन्ना जी ने तो समझा ही नहीं, ये सब तो कर्म कैसे बनते, बंधहत्ती और निकाचित में उलझाए रहे हमें। मैंने कहा बहुत मैं समझाऊंगा, अभी क्या समझाएंगे, क्या समझ गए ना, अभी अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कि वो जो बनाना है 1 किलो पाप, तो उसमें भावों का कितना उसका, तो अन्याय नहीं है, क्यों मारे तो ना इसने भावों वाले ने एक भी जीव को, और ना अपराय वाले ने, तो मरे तो अपने आप ही है, समझ गए ना। अब अभिप्राय और भाव में देखो, वो भाव जो हमें तत्काल गुस्सा आया तो हमने गोली चला दी, तो एक जीव को मारने के लिए गोली चलाई, 1500 मर जाए वहां इसके लिए गोली नहीं चलाई, समझ गए ना। लेकिन जब वो अभिप्राय के अंदर में ये राजा लोग पुराने चौराहे पर खड़ा करके लोगों को फांसी पे चढ़ाते थे, क्या मतलब था चौराहे पर लगाए को, फांसी घर में फांसी लगा दो ना, कि नहीं सारी दुनिया देख ले कि जो मेरा विरोध करेगा उसकी ये दशा की जाएगी जो इसकी की जा रही है। तो वो एक को मारने का अभिप्राय नहीं है, उसके बहाने सारी दुनिया को गुलाम बनाने का अभिप्राय है, सारी दुनिया को मारने की धमकी देने का भाव है। तो अनंत जीवों को मारने का भाव है, इसलिए अनंत गुणा पाप है, मुफ्त का नहीं है, क्यों जी। ये अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आकर बम बरसाकर ये सारा बर्बाद कर दिया, क्या गलती थी अफगानिस्तान वालों की, कई एक वो लादेन था ना लादेन, तो वो लादेन ने वहां का उनकी एक बिल्डिंग गिरा दी थी, और उसका क्या अपराध था, एक बिल्डिंग, तो लादेन को मारते ना, लादेन को पकड़ लेते, जिनने गिराई थी वे तो मरे ही गए थे, और उनके 10-5 साथियों को पकड़ लेते, पूरे देश को बर्बाद करने का उन्हें किसने अधिकार दिया था, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। लादेन को तो आज तक नहीं पकड़ पाए, लेकिन वो सारी दुनिया को उन्हें ये दिखाना था कि भारत की संसद नहीं है कि तुम जाकर उसको उड़ा दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ये अमेरिका है। अमेरिका के एक मकान को बेटा टच करके देखोगे तो तुम्हारा सारा देश नाबूद हो जाएगा। समझ लो तुम हिंदुस्तान वाले भी, ये तो भाग्य की बात है कि वे अफगानिस्तानी थे, हमको इतना उधर के थे पता चला है। एक दाढ़ी वाले ने किया तो बेटा अपने पंजाबी दाढ़ी वालों की अमेरिका ने दुर्दशा कर दी। क्यों? ये दुर्भाग्य से कोई अपने यहां का आदमी होता उनमें तो आज अपन भी अफगानिस्तान जैसे हो गए होते। सारी दुनिया को चेतावनी है कि ये समझ लो, ये अभिप्राय है, क्योंकि जिसने गिराया उसको मारने का कहां है, वहां वो कहां है, वो तो गरीब मर रहे। वो जानते हैं कि जिनको हम बम गिर रहे, जिनके ऊपर जिनके घर बर्बाद हो रहे, जिनकी मां बहन की इज्जत लुट रही, उनने एक ने भी ये अपराध नहीं किया है। क्यों? तो सद्दाम को भी दुनिया देख लो, मुसलमान देख लो, हिंदू देख लो, क्यों क्यों ये जो अभिप्राय की खोट है कि सारा विश्व मेरा गुलाम है, सारा विश्व ये देख ले कि जिसने हमारी तरफ आंख उठा के देखी, अकेली उसकी आंख नहीं, दुनिया में नक्शे में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं अभिप्राय की। बोलो, मैं तो अमेरिका में पूछता था लोगों से कि गुस्सा आप कहां जाएंगे, कौन से नरक में जाएंगे, अब क्या करें, सात ही में भेजना पड़ेगा, आठवां तो है नहीं ना। ये छाबड़ा जी सुनाते हैं कि इंदौर में जब सेठ जी के सात मील थे और वे आठवां मील खोलने लगे तो सेठानी ने कहा, क्या कर रहे सेठ जी के, आठवां मील खोल रहा हूं। आठवां मील खोल रहे हो? कि हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है कि नरक सात ही हो? आप सब इतने विश्व के 6 अरब आदमी थोड़ी मरेंगे, कितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, समझ गया ना। मेरे विरुद्ध भाव रखने वाला इस जगत में रह नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूं कि भाई साहब मार गया ना, अब सद्दाम को मार दो, उसे मार दो गोली करके खत्म करो ना खेल, जितने मर गए ना तुमने मान लिए। नहीं, उनका बस चले तो उन्हें अलोकाकाश में भेज दें। वो क्या मतलब, अलोकाकाश कहां से आ गया? एक बाप को गुस्सा आता है तो अपने बेटा से कहता, नालायक निकल जा मेरे घर से, क्योंकि वो समझता घर मेरा है, तो घर से निकालने की धमकी देता है। गांव के जमींदार जागीरदार को गुस्सा आता है तो गांव निकाल दो गांव के बाहर, वो गांव से निकालता है। राजा कहता, देश निकाला दे दो, क्यों कहता कि नहीं कहता है। और भारत के गवर्नमेंट को आज गुस्सा, तो काला पानी भेज दो, पूरे भारत में से निकाल दो, क्यों? और गुस्सा आपको गुस्सा आए तो सारा विश्व तो उनके बाप का है, तो आप तो अलोकाकाश में ही भेजना पड़ेगा। ये अभिप्राय का अंतर समझे आप? अकेले 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 बुश की बात नहीं है, घर घर में बुश बैठे हैं। अपना कट्टा चिट्ठा खोलें थोड़ा। क्यों दिल्ली वाले सेठ जी, क्या नाम बताएं थोड़ा। सेठ जी को एक मच्छर उन्होंने काटा, आजकल तो मच्छर बहुत हो गए, एक मच्छर ने यहां काटा, उसने आपका एक बूंद खून पिया, एक बूंद के लायक कहां पेट है उसका, एक बूंद से भी आधी बूंद की आधी, वन फोर्थ, इतना सा तो पेट है बेचारे का, उसने इतना सा खून पिया आपका, और आपने फट से उसकी जान भी निकाल ली और अपना खून भी निकाल लिया। एक ककड़ी के चोर को ये है कटार मारना, क्या गलती की थी उसने, ये फांसी की सजा उसे क्यों दी आपने, बिना मुकदमा चलाए, इससे तो वो दिया अच्छा कि भुट्टो पे मुकदमा चला के तो मारा था, तुमने तो बिना ही फैसले के काम कर दिया,
आप क्या बात करते हो, वो हमारा खून पी गया। अरे बाप, कितना सब पिया था, तो उसमें क्या है। बेचारे की खेती नहीं थी, कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, धंधा पानी नहीं था, उसे तो अपना पेट कहीं यहीं से भरना था ना। उसके पास तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं था, चाहे वो भूखों मर जाता या तुम्हारे चांदे से मर गया। तुमसे कोई बैर विरोध नहीं था, इसके कारण उसने तुम्हारा खून नहीं पिया था, उसने तो अपना पेट भरा था, क्यों? और आपने इतनी बड़ी सजा दे दी। अरे तो बहुत छोटी है, आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं, डीडीटी को बुला ना, उस डीडीटी के बारे में छिड़कवा लेना, सब कमरों में डीडीटी। अब डीडीटी छिड़कवाओगे सेठ जी, अकेले मच्छर मरेंगे, मक्खियां नहीं मरेंगी, और जितने कीड़े मकोड़े घर में होते हैं वे मरेंगे कि नहीं मरेंगे सब? तो इन सब ने क्या अपराध किया था आपका? एक मच्छर ने पाव बूंद खून क्या पिया कि आपने पूरे घर के कीड़े मकोड़ों की सफाई कर दी? क्यों? और इतने से ही क्या हुआ? दुर्भाग्य से दिया म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए तो पूरे जयपुर में डीडीटी छिड़कवा दो, एक मच्छर नहीं रहना चाहिए हमारा जो जयपुर में, मच्छर फ्री होना चाहिए। और चूहे ज्यादा बढ़ गए हों तो एक चूहा मार के लाओ 10 रुपए का इनाम लाओ। सूरत के चूहे मरवाने के लिए बेचारे प्लेग भाई आदमी मरे हों चाहे नहीं मरे होंगे, करोड़ों चूहे मर गए। क्यों? ये क्या है? ये अभिप्राय का दोष है सब, कि जो हमें जरा तकलीफ पहुंचा सकता है, जबकि एक दिन दूसरे को तकलीफ पहुंचाता नहीं है, बस उसको इस जगत में रहने का अधिकार नहीं। और दुर्भाग्य से यदि प्रधानमंत्री बन गए तो सारे देश में की एक भी कीटाणु नहीं बचे, और गांव गांव में दीवारों पर लिखवा दो कि कोई आदमी मरीज दिया का मरीज लाएगा तो 1,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये सरकार की घोषणा है कि हमने सारे देश को मच्छरों से रहित कर दिया है। बोलो ये सब लोग कौन हैं? ये बुश से कम थोड़ी है, बुश के बगल में कुछ सीटें इन लोगों को भी रिजर्व रखनी करनी पड़ेगी। जहां बुश को भेजेंगे वहां ये लोग भी तो जाएंगे कि नहीं? कि हमारा ये अभिप्राय है कि हमारे विरुद्ध जो खड़ा हो गया बस वो खत्म। तो वो अनंत गुणा जो पाप है वह अभिप्राय का, वो कोई अन्याय नहीं है, वो वस्तु के स्वरूप के अनुरूप है, अनुकूल है। तो बंटवारा हो गया 1 किलो पाप का, कितना क्या रहा फाइनल? कि क्रिया का रंज मात्र भी नहीं, चाहे वह घड़ी चुराने की हो और चाहे वो आदमी को मारने की हो, है ना। और भाव का अनंतमा भाग, और अभिप्राय का कि मैं सूझे वो सुखी दुखी कर सकता हूं, मार जला सकता हूं, इसका अनंत गुणा पाप लगता है। द पाप का गणित निपटा, सेकंड चैप्टर क्लोज, अब थर्ड चैप्टर अभी तो है ना समय, चलो अब पुण्य का हिसाब भी समझ लें। अभी तो मैं अकेले बंध का समझाऊंगा और फिर कल नंबर आएगा पुण्य उदय का, उदय का क्या हिसाब किताब है, भाग में जाना, समझ गया ना। पुण्य का कैसा होगा कि हमने गोली चलाई और वो आदमी नहीं मरा, अथवा समझ लो कि किसी ने गोली चलाई और उसने उसे मारने की कोशिश की और हमने ऐसा बीच में उसका हाथ हिला दिया कि हम बीच में आ गए, कि हमने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया किसको जिसमें गोली मारी जा रही थी और हमने उसे बचा लिया, तो हमें पुण्य बना, वो भी 1 किलो बना। कितना बना? 1 किलो पुण्य बना, क्योंकि हमने उसे बचा लिया। अब इसमें बंटवारा करें तो वो पाप जैसा, अब तो काम सरल हो गया ना, एक बंटवारा अपन ने कर लिया, दूसरा सहजता से हो जाएगा। तो थोड़ा फिर सहयोग करता हूं मैं, क्यों जी आपने बचाने की बहुत कोशिश की और फिर भी यदि वो गोली लग के मर जाता तो आपको कितना पुण्य लगता? वही 1 किलो पूरा। माने मरना और बचना और नहीं बचना ये तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, वो तो उसके आयु कर्म पर निर्भर था, इसलिए तुम उसके कर्ता धर्ता हो ही नहीं। लेकिन तुमने तो बचाने की पूरी कोशिश, मैंने पूरा भाव कर लिया, पर अभिप्राय भी बचाने का था, ठीक है ना, इसलिए तुमको पूरा 1 किलो पुण्य मिल गया। यहां तक तो ठीक हो गया मामला। अब वो पुण्य में बचाने के भाव का कितना पुण्य और बचाने के अभिप्राय का कितना पुण्य, ये बंटवारा करना है। इस रूपों 2 मिनट रुकूंगा मैं, सोच लेना सब अपने मन में इसका उत्तर, फिर मैं जवाब दूंगा। वो तुम्हारे पास उदाहरण है पाप का, है ना? पुण्य तो 1 किलो पूरा का पूरा लगा है। कितना रखें भाई साहब, मैं ही बताऊं? देखो, पूरा 1 किलो पुण्य आपको बचाने के भाव का लगा है, अभिप्राय का बिल्कुल भी नहीं। स्वीकार है? नहीं हो तो अभी इंकार कर सकते हो, फाइनल फैसला नहीं हुआ। ये बहुत बहुत फायदे में रहे हम तो, क्योंकि पाप तो लगा था उसने 1 ग्राम, वो पुण्य अकेले भाव से ही पूरा किलो मिल गया। आप समझिए, तो देखो बचाने के भाव में 1 किलो पुण्य और मारने के भाव में 1 ग्राम पाप, तो पाप से पुण्य तो कई गुना हो गया ना। अरे धोखे में मत रहना। तो अभिप्राय का क्या हुआ फिर, तो उसका उससे क्या होगा फिर, उसको को तो भी हिस्सा मिलना चाहिए ना, तो उसे पुण्य में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मिथ्या अभिप्राय है, तो उससे तो अनंत गुणा पाप बंधेगा। सोचो, रात भर सोचना, क्या तुम सोच रहे थे कि हम पुण्य बांध रहे और अनंत गुणा पाप जो उसमें बंधा था ना काल में मारने के अभिप्राय में, वो बचाने के अभिप्राय में उतना ही का उतना पाप बंधा, पाप ही बंधा, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। वहां तो 1 ग्राम चला गया था उसमें अनंतमा भाग, यहां पूरा का वो 1 ग्राम भी इधर ही आ गया। अनंत गुणा पाप बंधा, 100 ग्राम पुण्य बंधा, और क्रिया से कुछ हुआ, भाव से पुण्य, बचाने के भाव से पुण्य बंधा, बचाने के अभिप्राय से पाप बंधा। ये तो बहुत ही गड़बड़ है, ऐसा जैन धर्म हमें मान्य नहीं है। तो सोच लो, एक धर्म मान्य हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं ठीक है। सारा जगत नहीं करता है, जो स्मारक के बाहर बैठे हैं, तो तुम भी मत करो, हमें क्या फर्क पड़ना है, वो नहीं करता। जैसे तुम भी उस दृष्टि में आ जाओगे, हमें तो क्या फर्क पड़ना है, लेकिन अन्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नियम है कौन सा, कि हम परद्रव्य को ना मार सकते हैं और ना बचा सकते हैं, ना सुखी कर सकते हैं ना दुखी कर सकते हैं, ये जो हमारा महानियम है, तो इस महानियम का भंग तो मारने के अभिप्राय में जितना हुआ उतना ही बचाने के अभिप्राय में भी हुआ ना। काहे की किफायत, क्योंकि हस्तक्षेप तो वैसे का वैसा रहा ना, पर में कब्जा करने की बात तो वैसी की वैसी रही ना, कि बहुत हद हो गई, अब ज्यादा आगे मत बढ़ो। देखो सुनो, आप क्या समझते हो कि मारने वाले खोटे हैं और बताने वाले अच्छे हैं, जरा उसको भी सुन लो। आप इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और उसे मार मार के पूरा कब्जा कर लिया, भागी के लोगों को भगा दिया और बाकी के पर कब्जा कर लिया। ये सच्ची घटना है क्या? नहीं है ना। अब अमेरिका आया बचाने के लिए, समझे ना, तो अमेरिका ने इराकियों को मार मार के भगा दिया और कुवैत को बचा लिया, बच गया ना। कितना कितनी खुशी हुई होगी कुवैत को, क्यों, कितना सुख मिला होगा कि पूरी आजादी चली गई थी और पूरी आजादी मिल गई,
अब जरा सुख देखो कितना बढ़िया सुख मिला। फिर वो अमेरिकन बोले कि अभी तो हमने इन्हें मार के भगा दिया और हम अमेरिका गए, फिर तुम्हारी धुनाई करेंगे, वो घुसाएंगे, फिर क्या करें, हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी और तुम्हें ये गुलाम बना लेंगे। तो बात तो सच्ची, तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए परमानेंट रहेंगे। बोले क्या फर्क पड़ा, इराक के गुलाम भय के अमेरिका के हो गए, ये बचाने का परिणाम देखा आपने। अभी सुनो और पूरी बात, कि हम आपको बताने के लिए यही रहेंगे। मैं आपसे बहुत बात बोलता हूं, शायद आप नाराज हो जाएं, लेकिन हो जाना एक दफे। क्यों जी, क्या नुकसान था, इराक ने उस पर कब्जा कर लिया था कुवैत पे, वो अपने में शामिल कर लेता तो बड़ा देश हो जाता, क्या तकलीफ होती कुवैत वालों को, उनका भी 5 MP होते, उनके भी मिनिस्टर होते, उन्हें भी राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिलता, उन्हें तो इराकियों के समान पूरा वोटिंग पावर मिलता कि नहीं मिलता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो गुलाम कैसे होते, जो स्वतंत्रता का चुनाव में पाकिस्तान को अपने हिंदुस्तान में शामिल हो गया, तो पाकिस्तान गुलाम कैसे होगा, क्यों वहां के लोगों को अधिकार मिलेगा वोट डालने का कि नहीं, वहां की जनता के हिसाब से MP चुने जाएंगे कि नहीं, वहां का लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकेंगे कि नहीं, और यदि उसका नाम गुलामी है तो राजस्थान गुलाम है, गुजरात गुलाम है, वो तो हमारे हिंदुस्तान देश का एक वैसा ही हिस्सा हो जाता ना, बिल्कुल आजाद। और पहले कहते हैं इराक का कुवैत था भी, जैसा अपन कहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश अपना ही था पहले, फिर इतिहास में मत जाओ, लेकिन क्या होता बुरा से बुरा मुझे बताओ, 150 वर्ष बाद तो वे सब एक से ही नागरिक हो जाते, 10-5 साल थोड़ी तकलीफ पहुंचाते मान लो कुछ करते, लेकिन बाद में तो सब एक से ही नागरिक एक गांव के हो जाते कि नहीं, सिक्किम अपने में आ गया, तो सिक्किम को क्या अपने प्रतंत्र शामिल हो गया ना, सिक्किम का कौन सा शामिल हो गया था, यानी वो होता तो कुछ नहीं होता, और अब क्या हुआ वो देखो, क्योंकि अमेरिका में तो शामिल हो नहीं सकता, अमेरिका के राष्ट्रपति को तो उसे वोट डालने को मिलने नहीं है, वहां की संसद के तो मेंबर भी बन नहीं पा रहे हैं, समझ में आया अंतर, समझ में आया ना, पाकिस्तान में ऐसी कब्जा अमेरिका आगे कर ले बचाने के नाम पे, तो पाकिस्तान गुलाम होगा, अपने में शामिल होने में गुलाम होगा, जो उनके में उनके बचने में गुलाम होगा, बोलो हारने में गुलाम होगा क्या, वो अमेरिका के सहयोग से जीतने में गुलाम होगा। अब सुनिए फिर क्या होगा, कि ये हमारे सैनिक आपके यहां रहेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, कि साहब ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो इनकी तनख्वाह आपको चुकानी पड़ेगी, अब तनख्वाह डाल लो मैं, अब हिंदुस्तान के एक सैनिक को ऊपर 5,000 रुपया देते, अब अमेरिका के सैनिक को $5,000 दो, अब इनका कमर टूट जाएगा, ये पाकिस्तान में रुक जाएंगे रक्षा करने के लिए, और डॉलरों के हिसाब से वो उनकी तनख्वाह मिले, क्यों अब कुवैत वालों को वो तनख्वाह चुकानी पड़ रही है उनकी, अमेरिकी डॉलरों में उनकी तनख्वाह चुकाओ, वो भी तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, कि ये हमारी रक्षा करेंगे तो जो हमारी आज्ञा मानेंगे ना, कि नहीं तुम्हारे नहीं मानेंगे, तुम्हारे थोड़ी है सैनिक, तो हमारे हैं, हम जो आज्ञा देंगे वो मानेंगे, कौन हमें आज्ञा देंगे कि इनके कुवैत के राष्ट्रपति को पकड़ लो तो पकड़ लेंगे, प्रधानमंत्री को जेल में डाल देंगे, आज्ञा मानेंगे उनकी, तनख्वाह चुकाएंगे ये डालरों में, कितनी बढ़िया सुरक्षा भाई, अब समझ में आए ना, कि उसमें बराबर पाप लग रहा तो मुफ्त का नहीं लग रहा, इस सुरक्षा के नाम पर क्या होता है, क्यों कि भैया हम करें क्या, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम तो अपने चपरासियों की तनख्वाह नहीं चुका पाते हैं, अब तुम्हारी अमेरिकी डालरों में इन सैनिकों की तनख्वाह चुकाएंगे कहां से, कि तुम चिंता मत करो हम तुम्हारा तेल निकाल लेंगे, तेल निकालने का अर्थ आप हिंदी वालों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है, क्यों तेल निकालने का अर्थ समझते हैं आप, क्या उनके सारे तेल के कुएं खाली हो रहे हैं, घबराओ मत, पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आएगा, अमेरिका कभी भी नहीं आएगा, क्यों कि पाकिस्तान में तेल नहीं है, निकालेंगे क्या।
वे तो ईरान को बचाएंगे, इराक को बचाएंगे, सब उनको ही बचाएंगे जहां जहां तेल है। अब अंदाजा, मैंने सब अमेरिका में ये सुनाया है सबको, एक एक गांव में। अब मेरी रिपोर्ट वोट बन गई होगी तो शायद मेरी कोई आतंकवादियों में शामिल ना हो जाऊं, लेकिन मुझे क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है इस महासिद्धांत को समझाने का। बोलो, अब आपको जो बचाने के भाव का अनंत गुणा पाप लगा जतीश भाई, इसका न्याय आपके ख्याल में आया कि नहीं आया? ये आचार्यों ने इतने वर्ष पुराने ऐसी बात में कही, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आई है, तो ऐसी बात होगी? हमको लगता है न्याय है, बचाने का भाव का अभिप्राय रखा, इसमें भी पाप बने, इसमें पाप बने, बचाने के अभिप्राय में पाप क्यों बने? बचाने के भाव से पुण्य बनता है, वो बचाने के अभिप्राय से पाप बनता है, कैसी कैसे बात है? क्योंकि मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व संबंधी बंध तो पाप ही होता है, और इसमें तो जो चारित्र मोह में तो पुण्य पाप का भेद है, और दर्शन मोह में तो पुण्य पाप का भेद ही नहीं है, इसलिए पुण्य तो यहां इसलिए बन जाता है कि वो भेद है। अब हिसाब लगाओ पाप बंद का, जो मैं कह रहा था पाप बंद का, अपन क्या समझ रहे हैं कि हम कितना पाप बांध रहे हैं और कितना काट रहे हैं, और जरा जरा से पाप के लिए लड़ रहे हैं क्या? अब एक वहां तो क्रिया में नहीं था, समझे ना, फिर भाव में, फिर अभिप्राय का, और फिर ये बचाने के भाव में भी पाप ही, मारने के भाव में भी पाप ही, मारने के भाव में अभिप्राय, अभिप्राय में पाप, बचाने के अभिप्राय में पाप, तो पाप का तो ढेर लग रहा है, तो पुण्य तो कितना ज्यादा, वो बीच में जरा बचाने का भाव आ गया था तो उसमें अपन ने 1 किलो दे दिया था आपको पूरा। तो पुण्य और पाप का अनुपात क्या है देख लो, कि सजा तो ऐसी नहीं दिखती है, हम तो नरक से स्वर्ग में डबल काल बिताते हैं। अरे फिर वो महानिगोद में जाएंगे ना, उस पाप का फल तो निगोद है ना, जो अनंत काल तक बिताओगे, क्योंकि ऐसा नियम है, 30 पर्याय में आते हैं तो 2000 सागर को निकलते हैं ना, तो 2/3 स्वर्ग में जाते हैं, 1/3 नरक में। तो हम तो पुण्य का फल भोगते हैं स्वर्ग में जाकर के, और तुम कहते इतना पाप। अरे पाप का ढेर तो वो जो पाप बता रहे हम, उस पाप को तो निगोद में भुगतना पड़ेगा अनंत काल तक। भाई साहब तुम यहां कहां 2000 सागर का हिसाब लगा रहे, वहां में तो ये है ही नहीं तुम्हारे पुनरक स्वर्ग, क्यों? क्योंकि निगोद में। तो हम अब कल्पना करो, हम कितना पाप बांध रहे और कितना पुण्य बांध रहे। अब बस अब जरा सी क्रिया बदल दी और हम अपने को धर्मात्मा मान के बैठ गए, जबकि उसमें न पुण्य था, न पाप था, न धर्म था। थोड़े से भाव बदल गए, उसमें जरा सा पुण्य था। अभिप्राय की कोई बात ही नहीं करना चाहता है, अभिप्राय की कोई चर्चा ही नहीं है, जहां इतना ढेर सारा पाप हम निरंतर बांध रहे हैं और निरंतर बन रहा है। तो ये पुण्य पाप के बंधने का ये हिसाब है। अभी उदय की बात करें।